हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नहीं कर सकती, और ये मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, माफ़ी भी नहीं। इसलिए अगर आप इस उम्मीद से यहाँ हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी, तो लौट जाइए वापस, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा धृति। तुम्हारे बिना ये 3 साल मैंने तन्हा अकेले कैसे बिताए हैं बस मैं जानता हूँ, और अब मुझ में वो जिंदगी फिर से जीने की हिम्मत नहीं है। यहीं रहूंगा मैं और तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम नहीं भी मानी तब भी यहीं रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। अब तुम्हें दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अर्णव ने दृढ़ता से अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर धृति के माथे पर बल पड़ गए। मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा आपको, धृति ने अर्णव को चेताने की कोशिश की, पर अर्णव भी अपने अड़िग फैसले पर अड़ा रहा। वो तो वक्त ही बताएगा, पर अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब या तो मुझे तुम्हारी माफ़ी और साथ मिलेगा, या फिर दर्द भरी मौत। शायद तब मेरे गुनाह माफ हो जाएं। ये कैसी जिद है आपकी? धृति उसके मौत की बात सुनकर तड़प उठी और झुंझलाते हुए उसे घूरने लगी। वहीं अर्णव ने गंभीरता से जवाब दिया, जिद मैं नहीं तुम कर रही हो धृति। 3 साल से तुम्हारी दी सजा भुगत रहा हूँ। सच्चे दिल से प्रायश्चित करने पर तो भगवान भी माफ कर देते हैं, पर तुम मुझे माफ करने को तैयार नहीं। पता नहीं इतनी पत्थर दिल कब हो गई तुम, कि मेरे मोहब्बत भरे दिल को हर बार बड़ी ही क्रूरता और निर्दयता से तोड़ने के बावजूद तुम्हारे माथे पर शिकन की एक रेखा तक नजर नहीं आती। मुझे अंदाजा नहीं था धृति कि तुम इतनी बेरहम, बेदर्द, संगदिल निकलोगी कि अपनी जिद के आगे तुम्हें मेरा पछतावा, तड़प, दर्द कुछ नहीं दिखेगा। पत्थर दिल कह ही दिया है तो ये बात भी समझ लीजिए कि इस पत्थर दिल लड़की की जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं। जगह नहीं तो ना सही, पर कोशिश में आखिरी सांस तक करता रहूंगा। या तो ये पत्थर दिल लड़की पिटलेगी, या फिर मुझे इस दर्द घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। आपसे कुछ भी कहना ही बेकार है, करनी तो आपको अपनी मनमानी ही है, तो करती रहिए अपनी मनमर्जी। धृति खींचते हुए चेहरा फेर कर बैठ गई और अर्णव ने तुरंत ही जवाब भी दे दिया, मनमानी तो तुम कर रही हो और अपनी जिद के आगे तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे कारण सिर्फ मैं ही सफ़र नहीं कर रहा, बल्कि माधुरी और कबीर भी एक दूसरे से दूर हैं। माधुरी का जिक्र आते ही धृति के चेहरे के भाव कोमल हो गए और उसने नरमी से जवाब दिया, मैं बात करूंगी माधुरी से, कोशिश करके देख लो, पर वो नहीं मानेगी क्योंकि तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी है वो। अर्णव ने बड़ी ही बेफिक्री से लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, जिसने धृति को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद दोनों की कोई बात नहीं हुई। धृति अब माधुरी और कबीर के बारे में सोचती रही और अर्णव अपने और धृति के बिगड़ते रिश्ते के बारे में सोचकर परेशान होता रहा, जिसमें उसे सुधार की कोई उम्मीद तक नज़र नहीं आ रही थी। कुछ ही मिनट बाद कार धृति के घर, मतलब उस कॉटेज के बाहर आकर रुकी और तब कहीं जाकर वो होश में लौटी। अगले ही पल दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गई। डोरबेल बजाई तो गेट माधुरी ने खोला। तुम तो पूरी की पूरी भीगी हुई हो, उस पर नज़र पड़ते ही माधुरी ने हैरान परेशान अंदाज में कहा, और इसी दौरान उसके कानों में कार स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी, जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, और बस उसे कार के अंदर बैठे अर्णव की एक झलक ही नज़र आई। उसके देखते देखते ही कार आगे बढ़ गई। माधुरी की नज़रों ने दूर तक कार का पीछा किया, जबकि धृति अंदर जा चुकी थी। कुछ देर बाद धृति, कार में अर्णव था ना? धृति नहाकर फ्रेश होकर हॉल में आई थी जब चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए माधुरी ने ये सवाल किया था। सवाल सुनकर धृति पल भर को ठिठकी, फिर कप को अपनी हथेलियों के बीच थामते हुए उसके गर्माहट को महसूस करते हुए सर हिलाकर हामी भर दी। तुम उसके साथ क्या कर रही थी? माधुरी किसी जासूस जैसे गहरी गहरी निगाहों से उसे देखने लगी। छोड़ने आए थे, धृति ने संक्षिप्त में जवाब दिया और चाय की चुस्कियां लेने लगी, पर उसका जवाब सुनकर माधुरी की भौहें तन चुकी थीं। उसने तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए अगला सवाल दागा, क्यों और तुम उससे कहाँ मिली? धृति ने अब गहरी सांस छोड़ी, शायद समझ चुकी थी कि अब सच बताने का वक्त आ गया था। उसने कप वापस टेबल पर रखा और गंभीरता से जवाब दिया, वो बॉस है मेरे, उन्हीं के साथ काम करती हूँ। बारिश की वजह से मजबूरी में उनके साथ आना पड़ा। धृति के शब्द कानों में पड़ते ही माधुरी के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें बेयकीनी से फैल गईं और वो हैरानगी से तेज आवाज में बोल पड़ी, व्हाट, वो बॉस है तुम्हारा? ये कब हुआ? 3 महीने हो गए, धृति ने बिना किसी भाव के छोटा सा जवाब दिया, पर उसका जवाब माधुरी को और ज्यादा हैरत में डाल गया। 3 महीने से तुम उसके साथ काम कर रही हो और तुमने अब तक मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? बस बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है हमारा, काम की बात पहले कभी घर पर नहीं की, इसलिए ये बात भी नहीं बताई। माधुरी ने नाराजगी भरी निगाहों से उसे घोरा और अपना सर थाम लिया। धृति अर्णव की कही बात के बारे में सोचने लगी। ये मौका उसे सही लगा, आज कुछ भी साथ नहीं था तो खुलकर बात कर सकती थी। यही सोचते हुए उसने बात की शुरुआत की, माधुरी मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? माधुरी सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। धृति ने पल भर सोचा, फिर भूमिका बांधने में वक्त बर्बाद करने के बजाय उसने सीधे से बात करने का फैसला किया। माधुरी, मैं तुमसे तुम्हारे और कबीर के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, कद्र करती हूँ, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे नहीं अपने और कबीर के बारे में सोचना चाहिए। मेरी किस्मत में जो लिखा था सो मैंने भोगा, मेरे वजह से तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ जो हुआ उसमें कबीर का तो कोई दोष नहीं, फिर क्यों उससे दूर रहकर बिना किसी गलती के उसे और खुद को ये सजा दे रही हो? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण तुम अपनी मोहब्बत से दूर यहाँ तन्हा तड़प रही हो। माधुरी, जो खामोशी से धृति की बात सुन रही थी, हालांकि अचानक इस बात और कबीर के जिक्र से कुछ हैरान भी हुई थी, पर फिर उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझते हुए उसने भी चिंता भरे स्वर में अपनी बात उसके सामने रखी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता धृति तुम्हें तन्हा देखकर, मेरी किस्मत में यही तन्हाई लिखी है माधुरी। धृति ने जैसे ही ये कहा, माधुरी ने तुरंत ही उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी किस्मत में ये तन्हाई नहीं लिखी, तुमने खुद चुना है इस तन्हाई को अपने लिए। तुम्हारे सामने अर्णव अपनी बेपनाह मोहब्बत लिए खड़ा है, तुम चाहो तो उसके प्यार को अपना कर इस तन्हाई और अकेलेपन का अंत कर सकती हो। अर्णव के जिक्र से धृति के चेहरे पर पल भर को अजीब से भाव उभर आए। मेरी और उनकी बात अलग है माधुरी, तुम अपनी और कबीर के बारे में सोचो, जो हुआ उसमें तुम्हारी या उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती कैसे नहीं थी धृति, मैं पहले दिन से उसे कह रही थी, पर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अर्णव ने जो भी गलत तुम्हारे साथ किया उसमें बराबर का हिस्सेदार कबीर भी था, वो चाहता तो रोक सकता था अर्णव को। कैसे रोकता माधुरी, वो कभी से किसी की सुनते हैं जो उनकी सुनते, वैसे भी जो हालात थे उसमें उनकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। ये बात तो अर्णव पर भी लागू होती है ना? माधुरी प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारे और कबीर की बात कर रही हूँ, तो हमारे रिश्ते को बीच में मत लाओ। अपनी जिंदगी के इतने साल तुमने मेरे कारण बर्बाद कर दिए हैं, अब अपने बारे में सोचो, माफ कर दो कबीर को और लौट जाओ उसके पास। कर दूंगी माफ, पहले तुम बताओ क्या तुम कर दोगी उसे माफ? माधुरी के इस सवाल पर धृति ने तुरंत ही जवाब दिया, मैंने सबको माफ कर दिया माधुरी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है।
अच्छा, तो क्यों अपने और अर्णव के बीच गलतफहमी की दीवार बना रही हो? क्यों नहीं बता देती उसे कुश की असली पहचान? क्यों नहीं अपना लेती उसके प्यार को? क्यों नहीं लौट जाती उसकी जिंदगी में? माधुरी ने तहश में धृति से सवाल किया और धृति पहलू बदलकर रह गई। उसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी और मायूसी के भाव उभर आए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती माधुरी, उसकी आवाज और शब्दों में विवशता झलक रही थी और आंखों में बेचैनी। पर माधुरी भी ठान चुकी थी कि जब बात उठी है तो आज सब साफ करके ही रहेगी। उसने तुरंत ही सवाल किया, क्यों नहीं कर सकती धृति, और कितना नाराज रहोगी तुम अर्णव से? माना उसने जो किया वो गलत था, पर उसे अपनी गलतियों का एहसास है। उसने पहले भी अपनी हर गलती को सुधारने की कोशिश की थी, अब तो तुम्हारी दी सजा भुगत चुका है वो। फिर जब किस्मत ने दोबारा तुम्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो क्यों अर्णव और इस रिश्ते को एक मौका देने से कतरा रही हो तुम? टू बी कंटिन्यूड। क्या जवाब देगी धृति माधुरी के इस सवाल का?